ओम शांति। जैसे रास्तों पर हम चलते हैं तो बाहर साइन बोर्ड लिखे रहते हैं, दाएं जाओ बाएं जाओ लिखा रहता है जिस स्थान पर हम पहुंचना चाहते हैं वो यहाँ से कितना दूरी पर है। डायरेक्शंस क्या अंतर जगत में भी, चेतना के जगत में भी ऐसे कुछ बोर्ड्स हैं? शायद नहीं, क्योंकि ये जगत अदृश्य जगत है। यहाँ हर एक को अपना रास्ता खुद ढूंढना है। उस जगत के सामने जो ये भीतर का जगत है ये बहुत बहुत बड़ा है, इसके सामने ये जगत बहुत छोटा है। और हम सब उस अंतर जगत के राही है। हर एक को अपना मार्ग खुद ढूंढना होगा, दूसरों के बताए मार्ग कुछ समय के लिए हमारे काम आ सकते हैं, परंतु सबसे महत्वपूर्ण है हम इस समय कहाँ खड़े हैं। अफ्रीका के जंगल में एक व्यक्ति, कोई विदेशी गया भ्रमण के लिए, इससे पहले कि वो जंगलों में जाता वो दुकान पर गया और दुकानदार से कहा कि मुझे एक दिशा सूचक यंत्र चाहिए, एक कंपस, कैंपस, एक ऐसा कि जिससे दिशा का पता चले, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। दुकानदार उसे दिखाता है, उस यंत्र में वो सुई होती है और वो यात्री वो देखता है पर उस कंपास को पीछे करता है तो देखता वहां एक आईना है। वो पूछता है दुकानदार से, ये आईना किस लिए? वो दुकानदार कहता है ये कंपास आपको बताएगा कि तुम किस दिशा की ओर जा रहे, और ये आईना दिखाएगा कि कौन जा रहा है। अंतर जगत में कहाँ जाना है उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है किसे जाना है, कौन जा रहा है। तो आप सभी उस अंतर जगत के यात्री हैं, उस दुर्गम मंजिल तक पहुंचने के वाले पथिक, और यहाँ आना एक बहुत बहुत सूक्ष्म घटना है। स्थूल से हम यहाँ आ गए हैं, परंतु यदि इसे गहराई से देखें तो यहाँ आना हो सकता है कोई ऐसा परिवर्तन जीवन में लाए जो आज तक नहीं हुआ। यहाँ आना शायद ऐसा कोई उत्तर है जो अब तक नहीं मिला और जो मिलने वाला है। यहाँ आना शायद उस कारण से हो सकता है, ऐसा एक सूक्ष्म अनुभव जो हुआ नहीं और जिसकी तलाश थी और जिसे खोज रहे थे, और वो अचानक मिल जाए। इसलिए 3-4 दिवसों की ये जो साधना है, इस साधना में स्वयं को संपूर्ण रूपेण समर्पित कर देना। जितना गहरा हमारा समर्पण होगा, उतना ही गहरा अनुभव अगले 3 दिनों तक या जब तक यहाँ आप हैं, जब से आए तब से अपने आप को मनसा में मानसिक रीति तैयार रखना है, क्योंकि वो अनुभव किसी भी पल हो सकता है। अभी अभी बैठे हैं यहाँ, और किसी मौन और किसी एकांत क्षण में वो अनुभव हो जाए। और अनुभव इतना गहरा होता है कि जिसकी स्मृति लंबा समय चलती है, जिस स्थान पर वो हुआ उस स्थान की स्मृति, जिस समय वो हुआ उस समय की स्मृति। इसलिए जब तक यहाँ है, जब से यहाँ है, जब तक यहाँ रहेंगे, एक समर्पण अवस्था में रहना है, और साथ साथ जो भट्टी के रूल्स हैं, और मुख्य रूप से 3, पहला मौन। अगर यहाँ आकर भी सुबह से लेकर शाम तक हम बातचीत में लगे हैं, तो जिस पर्पस के लिए यहाँ आए वो नहीं होगा, कि अध्यात्म के अनुभव अत्यंत मौन में होते हैं, जहाँ बाहर का सारा आवाज रुक जाए और हम अपने भीतर जाकर उस अंतर जगत की यात्रा कर सके, जहाँ कोई बोर्ड साइनेज नहीं, कोई चिन्ह नहीं, उस अंतर जगत की यात्रा हम कर सके। दूसरा, स्वयं को इस कैंपस में कैद कर देना है, जब तक यहाँ है तब तक। इधर से बाहर जाऊँ, यहाँ जाऊँ, वहाँ जाऊँ, इसको देखूँ, उसको देखूँ, इसको मिलूँ, उसको मिलूँ, ये डिपार्टमेंट, वो डिपार्टमेंट, अपने आप को संयमित कर देना। और तीसरा, मोबाइल को पूर्ण रूपेण स्विच्ड ऑफ, साइलेंट भी नहीं, बंद, उस दुनिया से 100% डिस्कनेक्ट। जब तक नहीं होते तब तक इस दुनिया से रिकनेक्ट हम नहीं हो सकते। अगर बातचीत के बिना रह ही नहीं सकते, संगम युग की सबसे बड़ी बीमारी है बातचीत, तो कम बोलना है, और जो बोलेंगे वो केवल साधना संबंधित, तप संबंधित। अगर यहाँ आकर भी वही संसार की बातें, अगर यहाँ आकर भी वही दुनिया की बातें, अगर यहाँ आकर भी उसी जगत में है मन से, तो यहाँ आकर ज्ञान तो सुनेंगे, पॉइंट्स जमा करेंगे, सुपरफिशियल सतही अनुभव लेकर जाएंगे, परिवर्तन नहीं होगा। पुरुषार्थ अर्थात परिवर्तन। आज सुबह की साकार मुरली, कोई कोई है जो मुझे 2% याद करते हैं, और कोई 1%, और कोई आधा, व्हाट इज दिस आधा परसेंट याद, कहीं वो मैं तो नहीं। हम साधना के लिए आए हैं, तपने के लिए आए हैं, और तपस्या में सुविधाओं को नहीं देखा जाता। तपस्या अत्यंत मौन में होती है, अत्यंत एकांत में। निर्जन वनों में तपस्वी तपस्या करते हैं। ऐसा शायद कोई वन हमें ना मिले, ऐसा कोई एकांत हमें ना मिले, परंतु जब अब मिला है तो ये 3 दिन 4 दिन जब तक यहाँ है तब तक जितना हो सके चुप, अंतर्मुखी, मौन, एकांत, लॉकडाउन। एक जेन मास्टर बोकोजू के पास एक शिष्य आता है। वो पूछता है उससे, तुम कहाँ से आए? वो कहता है, चीन से आया हूँ। वो पूछता है, तुम जहाँ से आए हो वहाँ पर चावल के भाव क्या है? वो कहता है, मुझे नहीं पता। फिर पूछता है, वहाँ पर गेहूं के क्या भाव है? बोलता है, वो भी मुझे पता नहीं। वो पूछता है, दालें कैसे मिलती है वहां? तो मुझे नहीं पता। जेन मास्टर कहता है, तुम पास हुए। अगर तुमने एक भी प्रश्न का उत्तर दिया होता, अर्थात अभी भी तुम वही हो, उसी दुनिया में, मेरे पास आए हो तो सब कुछ छोड़कर, तपस्या करने आए हो तो उस दुनिया को उधर ही छोड़कर, ताकि ये 2-3 दिन हम अपने भीतर प्रवेश कर सके, यहाँ चीरा लगा सके। बड़ा गहरी, बड़ी गहरी ये सर्जरी है, ऑपरेशन है, चेतना का ऑपरेशन। ऑपरेशन होता है तो रेड लाइट लग जाता है ओटी में, बाकी लोग नहीं जा सकते, सब बाहर। यहाँ आत्मा पर सर्जिकल स्ट्राइक, तो मौन। तो इन 3 नियमों के साथ अगर नहीं किया है तो अब से करो, अंदर प्रवेश करेंगे। आज का इस सत्र शीर्षक है, आज शुरुआत है, आज से। हर मुरली कहाँ से शुरू होती है? अव्यक्तवाणी, आज, बाप दादा। एंड कहाँ होती है? अच्छा, आज और अच्छा के बीच सृष्टि का सारा रहस्य समाया हुआ है। और जब भगवान आता है तो गुड न्यूज़ लेकर आता है, और जब भगवान आता है कोई ऐसी खबर लाता है जो आज तक किसी धर्म स्थापक ने नहीं दी, किसी गुरु ने, किसी तपस्वी ने, किसी योगी ने, किसी सन्यासी ने, किसी ईश्वर पुत्र ने, किसी तीर्थंकर ने, किसी बुद्ध ने, किसी तापसी ने, किसी ने नहीं। ऐसी नई वार्ता वो लेकर आता है। एक आश्रम था और उस आश्रम पर नियम था, 3 दिन का महोत्सव होता था, एक विशेष महोत्सव। एक संदूक थी, उसमें एक पत्र रखा हुआ था, और जो वरिष्ठ गुरु होते थे वो संदूक रत्न जड़ित आभूषित अपने उत्तराधिकारी को वो संदूक सौंपता था। और ये माना गया है कि ये परंपरा हजारों सालों से चालू थी। जो प्रथम गुरु था, कहा जाता है उसे ईश्वर ने स्वयं यह संदूक दी थी और जिसमें एक पत्र है। तब से यह परंपरा चालू हुई और जैसे जैसे समय बढ़ता गया आगे, बाद में तो इसका और भव्य आयोजन होने लगा। उन 3 दिनों से पहले 10 दिन शोभा यात्राएं निकलती थी। 3 दिनों से पहले समारोह होते थे, सांस्कृतिक कार्यक्रम होते थे। 3 दिनों के बाद और 10-15 दिन कार्यक्रम चलते थे। पूरा मास इस महाउत्सव के लिए निश्चित था। और एक समय ऐसा आया कि गुरु जो वर्तमान में थे, वो अब उस संदूक को अपने उत्तराधिकारी को सौंप रहे थे। उस उत्तराधिकारी के मन में विचार आया कि आखिर इस संदूक में जो पत्र है और जो प्रथम गुरु का पत्र है, जिसे भगवान ने दिया था, इसमें आखिर लिखा क्या है। वो अपने अपने गुरु से पूछता है, क्या आपने ये कभी पत्र पढ़ा? वो गुरु कहते हैं, मैंने भी नहीं पढ़ा कभी, हम तो बस सुबह शाम इसकी पूजा करते हैं, पत्र की, उस संदूक की, क्योंकि ईश्वरीय, ईश्वर द्वारा प्रकट हुआ है। वो जो गुरु को प्राप्त हुआ है, प्रथम गुरु, उसके द्वारा ये चालू है। वो दोनों गुरु सोचते हैं कि उन्हें एक बार पढ़ लिया जाए। वो संदूक को खोलते हैं, पत्र को निकालते हैं, पत्र जरा जीर्ण हो चुका है। मैग्नीफाइंग ग्लास लाते हैं और उसमें उस पत्र को पढ़ते, और पत्र में लिखा होता है, जो प्रथम गुरु था उसने जो कार्यक्रम किया था, उसके बिल था उसमें कि तुम इस बिल को चुका देना। अपने दूसरे जो उत्तराधिकारी है, उसको वो कह के गया था, आश्रम का जो बिल है तुम उसे चुका देना। ये दोनों गुरु माथे पर हाथ रखते, ये था रहस्य। और यही समाज की परंपरा है। ये क्यों करते हो? क्योंकि हमारे पूर्वज करते थे। वो क्यों करते हो? हमारे दादा परदादा करते थे और वो परंपरा बनी। किसी ने प्रश्न नहीं पूछा, किसी ने जिज्ञासा व्यक्त नहीं की ये क्यों, बस ब्लाइंडली किए जा रहे हैं। भगवान उवाच, ये ज्ञान अंधश्रद्धा का ज्ञान नहीं है। मैं जो सुनाता हूं तुमको उसे जज करो, राइट है कि रॉन्ग है। वैसे ही किसी भी विवाद को स्वीकार नहीं कर लो, परंतु भक्ति मार्ग की गहरी आदतें हैं। सत्वचन महाराज कहने की, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। क्लास कैसा था? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। क्या अच्छा था? कनरस, वाणी विलास, बुद्धि विलास, परिवर्तन हुआ। प्रश्न पूछना है, विचार की क्रांति अपने जीवन में लानी है। डू नॉट एक्सेप्ट एनीथिंग, बुद्ध ने कभी कहा है, बिकॉज इट हैज बीन सेड बाय समवन। इसलिए स्वीकार नहीं करो कि किसी महापुरुष ने यह कहा है, इसलिए स्वीकार ना करो किसी किताब में लिखा है, इसलिए स्वीकार ना करो किसी शास्त्र में लिखा है, इसलिए स्वीकार ना करो क्योंकि परंपरा से वो आ रहा है। हो सकता है यही वो परंपरा है जो इस कहानी में सुनाई। सुना होगा आप सबने, एक गुरु है, ध्यान में बैठते हैं आश्रम में, एक बिल्ली उन्हें बहुत परेशान करती है। ध्यान में बैठे तो बिल्ली इधर से उधर से, तो उन्होंने नियम बनाया, ध्यान में बैठने से पहले बिल्ली को बांध दिया जाए। जब भी ध्यान में बैठते थे बिल्ली परेशान करती थी, इसलिए नियम बनाया खुद के लिए। गुरु चले गए, शरीर छोड़ दिया, दूसरे गुरु आए, उनको भी परेशान करती थी वो बिल्ली, उन्होंने भी बांधना चालू किया। दूसरे गुरु गए, तीसरे गुरु आए, बिल्ली भी मर गई। शिष्यों ने दूसरी बिल्ली खरीद कर लाई। सौ साल से आश्रम चालू है, उस आश्रम का प्रथम नियम है, जब भी ध्यान में बैठो पहले बिल्ली को बांधा जाए। और धीरे धीरे शास्त्र बने बिल्ली पर, बिल्ली का साधना में महत्व। फिर जो शास्त्र बने उस पर टीका के शास्त्र बने दूसरे, मीमांसा समीक्षा, कि बिल्ली को साधना में बांधने से क्या क्या फायदे हैं साधना से पहले, उस पर लोगों ने किताबें लिखी। और धीरे धीरे एक पूरी लाइब्रेरी है जिसमें लिखा है बिल्ली को डिवोटेड, किस प्रकार की बिल्ली होनी चाहिए, कौन सा रंग होना चाहिए, उस पर भोजन क्या देना चाहिए बिल्ली को, उस पर किताबें लिखी गई। और उस किसी भी किताब में एक बात लिखी नहीं गई है कि बिल्ली को इसलिए बांधा जाता है कि साधना में वो बाधा है। इसको क्या कहते हैं? अंधभक्ति। प्रश्न ही नहीं, विचार ही नहीं, केवल चले जा रहे हैं। तो आज की ताजा खबर में हम चार सूत्र देखेंगे। न्यूज़, NEWS, चार शब्द है। और क्या अर्थ बताते हैं इसका? नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, चारों तरफ की खबरें। वर्तमान समय न्यूज़ चैनल्स की बाढ़ आई है, जो हुआ नहीं है वो भी बताते हैं, बड़ा चढ़ा कर बताते हैं, सेंसेशनल न्यूज़, ब्रेकिंग न्यूज़। व्यूअर्स, व्यू काउंट, सब्सक्रिप्शंस, TRP, बहुत सारी मैटर है उसमें। उसने ये कहा तो हमने ये कहा, फिर एक कुछ बताता है उसके खिलाफ दूसरा बताता है, घटना एक हजारों लोग अलग 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 बताते हैं। हर जगह विवेक, विचार, चिंतन। अंधश्रद्धा से कुछ भी स्वीकार नहीं करना है, चाहे मुरली में भी कुछ आता हो। सोचो क्या है, भगवान ने खुद कहा है, इन्वर्टेड कॉमा, साकार मुरली, जो गाय उगारती नहीं है वो गोया बीमार है, जो बच्चे विचार सागर मंथन नहीं करते गोया बीमार है। चिंतन, कोई कहते हैं हमने 5 बार मुरली पढ़ी, पढ़ी केवल चिंतन नहीं किया, मनन नहीं किया, अध्ययन नहीं किया। संडे की मुरली अभी अभी आया था, मुरली का क्या करो, माया के दो रूप, एक व्यर्थ संकल्प, दूसरा मैं राइट हूँ। व्यर्थ संकल्प से मुक्ति की विधि है मनन, होमवर्क, डेली का होमवर्क है मुरली पर चिंतन, और चिंतन करते करते, मनन करते करते मगन हो जाओ। अभी अभी मुरली चली ना संडे। तो ये चार सूत्र है न्यूज़ के, जो आज की सबसे सेंसेशनल न्यूज़ है। इस ज्ञान में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है उमंग, उत्साह, पुरुषार्थ के प्रति, ज्ञान के प्रति। ये क्या है? उत्कंठा, क्यूरियोसिटी, अ सेंस ऑफ वंडर। आहा, आज की मुरली में भी शब्द आया है, ओहो। छोटा बच्चा होता है ना, उसमें उसके अंदर कैसा सेंस ऑफ वंडर होता है, पर जैसे जैसे हम बड़े हो जाते हैं वो वंडर मर जाता है, और रह जाती है केवल परंपरा है, रह जाती है बस, उठो, अमृत वेला करो, बैठो, तुम प्रेम, तुम ये हो, तुम वो हो, तुम प्यार कैसा करो, आनंद कैसा करो, शक्ति कैसा करो, इसका हो, वो हो, ऐसे हो, वैसे हो, इधर तिलक, इधर वरदान, फिर परम धाम, इसको सकाश, उसको सकाश। हो गया, चलो 4:45 हो गया, बहुत हो गया, बातें करते करते अमृत वेले के लिए, अमृत वेला किया, और बातें करते करते वापस कहाँ पर, कहाँ पर, सोने के लिए। अमृत वेले के बाद अच्छी नींद आती है। हाँ, फिर उठते 6 बजे, 6:15, 6:30 बजे, फिर मुरली, फिर जाओ वहाँ पर, फिर खोलो बुक, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें घर ले जाने के लिए, तुम्हें घर जाने की तैयारी करनी, अब रखो बाजू में। बीच में क्या हुआ बताई नहीं, और फिर एकदम जब मीठे मीठे तब धारणा के लिए मुख्य सार, पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, वरदान सदा कर्मयोगी भव। फिर बाजू में, फिर तो हो गया काम। चलो अब डेड ड्रैगिंग घसीट रहे हैं। वेर इज द स्पार्क, वेर इज द एनिमेशन, वो उमंग, वो उत्साह, वो चिंतन, वो मनन। वही 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 बाप आए हैं तुम्हें घर ले जाने के लिए। काम मां शत्रु है, आदि मध्य अंत दुख देता है, तुम्हें दिव्य गुण धारण करने हैं। कब नींद आ जाती पता ही नहीं चलता है। सबसे अच्छी नींद मुरली में आती है और अमृत वेला आती है, ये दो मेन है। क्या करे कि जिसमें इंटरेस्ट डेवलप हो जाए। जब तक रस नहीं तब तक एकाग्रता नहीं। एकाग्रता न होने का कारण है रस ही नहीं है उसमें, रस खो गया है। और रस आएगा चिंतन से, रस आएगा मनन से, रस आएगा अध्ययन से, रस आएगा चर्चा से, डिस्कशन से। यह है क्या, ये क्या वाक्य है, ये कौन सा वाक्य, ये कौन सा शब्द है, खोज करनी है। तो सबसे पहला है एन, अर्थात न्यू इंस्पिरेशंस। कि भगवान आया है, चाहे कितना भी पुराना मोह हो, एक सेकंड की जागृति भी उस मोह को समाप्त कर सकता है। चाहे कितना ही पुराना काम विकार हो और जिससे हम मुक्त नहीं हो पा रहे, एक सेकंड का अनुभव उस काम को नष्ट कर सकता है। यह न्यूनेस। मुरली को उस नए दृष्टिकोण से देखना है, एक सेंस ऑफ वंडर के आधार पर। क्या है ये, किसके है, कौन कह रहा है, क्या कह रहा है, मेरे लिए है। जो चीज हमारे लिए नहीं है उससे हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। जब तक हमको ये नहीं लगता ये मेरे लिए है, तब तक इंटरेस्ट नहीं है उसमें। उसकी खोजबीन करनी है, उस पर रिसर्च करना है, एक लाइन उठानी है, उसके बारे में सोचना है, ये क्या है। तो भगवान आया है, चाहे कितना ही पुराने अंधकार में क्यों ना हो, वो प्रकाश है। यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, ही दैट फॉलोएथ मी शैल नॉट वॉक इथ इन डार्कनेस। बाइबल में लिखा है मैं इस संसार का प्रकाश हूं, जो मेरे पीछे आएगा वो कभी भी अंधकार में नहीं भटक सकता। परमात्मा दिव्य प्रकाश है, जो हमारे मन में अंधेरा है, भय है, कोई चिंता है, कोई उलझन है, ये सब अंधेरे के प्रकार है। कोई चिंता, गहरी चिंता, दिन रात चिंता। हम क्या ऐसा करें जो क्रांति आ जाए जीवन में। हम क्या ऐसा करें जिसमें फिर से चेतना जाग जाए जो मर चुकी है। पहले ये स्वीकार करना पड़ेगा कि हम भटक गए, तभी ये उत्तर आएगा कि अभी मुझे क्या करना है। ये प्रश्न आएगा कि अभी मैं किससे पूछूं, क्या है सत्य, क्या है। अगर यही मान लिया कि मैं सब जानता हूं तो फिर खत्म, लर्निंग स्टॉप्स। और जो सीखोगे भी वो रटा रटा आया। लर्निंग के साथ लेवल्स है, और जो फर्स्ट लेवल ऑफ लर्निंग उसको कहते हैं जीरो लर्निंग, अर्थात ये लिखा हुआ है उसको पढ़ो, उसको रट्टा मारो, हो गया। जैसे सारे स्कूलों में सिखाते हैं, अधिकतर जो लर्निंग है वो लेवल वन की लर्निंग चल रही है, उसको कहते हैं जीरो लेवल लर्निंग। लेवल टू, लेवल थ्री, लेवल फोर, लेवल फाइव, लेवल सिक्स, लेवल सेवन लेवल्स है लर्निंग के। वो आप सब खोजो वो कौन से लेवल से। और हम कहाँ हैं, हम कैसे सीख रहे हैं। पाओगे कि हम लोएस्ट लेवल पर है, ये हमारा लर्निंग है, इसलिए उस सब्जेक्ट में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इंटरेस्ट खत्म हो चुका है। हम जो कर रहे हैं, लिख रहे हैं, सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, करा रहे हैं, वो एक उसी एक ही तल पर है। आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग नहीं है। इस पूरे मुरली को एक दूसरे दृष्टिकोण से। ये मुरलियाँ चली है 80s 60s में, उसका अपडेटेड वर्शन क्या है उसके लिए स्वयं चिंतन करना पड़ेगा। आज के युग में ये प्रासंगिक है या नहीं है, ये स्वयं का चिंतन करना होगा। अगर भगवान स्वयं अभी आ जाए तो वो नहीं बोलेगा जो साकार मुरलियों में और अव्यक्त मुरली, वो कुछ नया बताएगा। दिस टाइम ये AI का की दुनिया है, जहां हर एक के हाथ में इंटरनेट है, सोशल मीडिया है, खबरें हैं, एडवांस टेक्नोलॉजी और एडवांस माया भी है। इसलिए चाहे मोह कितना भी बड़ा हो, वो खत्म हो सकता है, ये है खुशखबरी। चाहे काम विकार ने कितनी बार भी परास्त किया हो, तो भी हम उसको हरा सकते हैं या फिर उससे परे निकल सकते हैं। हमारा जो शरीर है, ये शरीर केवल स्थूल ही नहीं, शास्त्रों में सात प्रकार, चार प्रकार के शरीर गिना है, पांच प्रकार के पंचकोश। इस शरीर के पीछे एक सूक्ष्म शरीर भी है, प्राणमय कोश, अन्नमय कोश, आनंदमय कोश, ऐसे अलग अलग कोश गिनाए हैं। हम सोचते हैं ये स्त्री और पुरुष के शरीरों का आकर्षण केवल स्थूल है, स्थूल नहीं है वो, दैट इज एग्जिस्टिंग एट द इथेरिक बॉडी लेवल। जो दिखाया है सात चक्र, मुरलियों में चक्रों की चर्चा नहीं है और ना ही ऐसे कोई चक्र है, ना ही कोई फिजियोलॉजिस्ट या एनाटॉमिस्ट हमको शरीर को काटेंगे तो ये चक्र दिखेंगे। ये सूक्ष्म ऊर्जा का जो शरीर है उसमें ये चक्र है, और जो काम का जो चक्र है, जब वो काम का चक्र सक्रिय रहता है तो मन में केवल कामुक विचार ही आते रहते हैं, और जो मन में कामुक विचार है तो सारी सृष्टि कामुक ही दिखाई देती है। लक्ष्य है इस काम के चक्र को निष्क्रिय कर देना, और तब उसका रूपांतरण होगा, और ऐसे व्यक्ति के लिए फिर स्त्री और पुरुष ये नहीं रहता, और तब वह ब्रह्मचर्य में प्रतिष्ठित होता है। तब तक केवल दमन, जबरदस्ती, पुरुषों में काम केंद्र ज्यादा सक्रिय होता है और स्त्रियों में नाभि केंद्र ज्यादा सक्रिय होता है कहा जाता है। नाभि का संबंध भय से है और चिंता से है, जल्दी भयभीत, जल्दी चिंता। इन केंद्रों को जब तक निष्क्रिय नहीं हम करते साधना से, और जैसे ही हम मेडिटेशन और साधना करने लगते हैं, चक्र निष्क्रिय होने लगते हैं और ब्रह्मचर्य स्वतः घटित होने लगता है और निर्भयता आती है। क्यों हम देखते हैं मंदिरों में स्त्रियां ज्यादा है, पुरुष कम? भय, चिंता। इसलिए जिनके मन में भय और चिंता ज्यादा है, उनको पेट की बीमारियां भी बहुत रहती है, IBS से लेके एसिडिटी से लेके कुछ ना कुछ होते रहता है, क्योंकि गट ब्रेन एक्सिस, इसका कनेक्शन इधर है। रिपोर्ट सारे नॉर्मल पर पेट ठीक नहीं है, क्योंकि ये बीमारी यहाँ कनेक्टेड है। इसलिए जब तक इसको ठीक नहीं करते, तब तक वो भी नहीं ठीक होने वाला। साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स, इसलिए इनको भी समझना है। जहां हम ध्यान लगाते हैं, ध्यान देते हैं, वो और ज्यादा सक्रिय होता है। व्यक्ति सोचता है इस काम विकार से छूटू, इंटरनेट पे जाओ देखो ब्रह्मचर्य के वीडियो, ब्रह्मचर्य से चालू करता है और काम विकार में ही एंड करता है। जिससे छूटने के लिए चिंतन करता है, उस चिंतन ही उसे फंसा देता है। मार्ग कुछ और है, कार्य किसी और तल पर करना है, ताकि ये ऊर्जा का शरीर स्थिर हो जाए, सारे चक्र एक्टिवेट हो जाए, एनर्जाइज हो जाए और अपने आप ब्रह्मचर्य फलित हो जाए। जब सूक्ष्म शरीर में ही स्त्री पुरुष का भान नहीं रहा, वहां कोई स्त्री पुरुष नहीं है, तो चेतना व्यक्ति अपने आप ऊपर उठ जाता है। संसार के लोग जिस तल पर जीते आकर्षण के, उसके थोड़ा सा ऊपर, और फिर ऐसी चेतना अपनी ऊर्जा को कहीं पर भी लगा ले, साहित्य, कला, सिंगिंग, कहीं पर भी, किसी भी क्षेत्र में, उसमें वो आगे चला जाता है और संसार के लोगों की एनर्जी लीक होती रहती है, काम विकार में, भय में, चिंता में, पैसों में, सत्ता। सबसे नीचे का केंद्र पैसों से जुड़ा है, उसके ऊपर का केंद्र काम विकार से जुड़ा है, तीसरा केंद्र नाभि का भय चिंता से जुड़ा है, हृदय केंद्र करुणा और प्रेम से जुड़ा है, यहां केंद्र है, बोलने से जुड़ा है जो मौन से निष्क्रिय होगा, और सबसे महत्वपूर्ण है आज्ञा चक्र, जो ध्यान से, मेडिटेशन से, योग से शक्तिशाली होगा, और योगी के ये सातों ही केंद्र, जिसको शास्त्रों ने कुंडलिनी कहा है, एक्टिवेटेड रहती है। इसलिए एक अद्भुत सी ऊर्जा का अनुभव होता है। इसलिए खुशखबरी यह है कि हम कितने भी विकारों पर में हैं, आज वो समय है हम सब विकारों से बाहर निकल सकते, आज वो समय है हम अपने सब दुखों से बाहर निकल सकते, आज वो समय है अपनी सारी चिंताओं से, अपने सारे कुंठा, भय, जो अंदर हर्ट है, ट्रॉमा है, उन सब से बाहर निकल सकते हैं, अगर हम संकल्प ले ले तो। हम संकल्प ले तो संकल्प के आधार पर बहुत कुछ होने लगेगा। हम जान ले कि मेरी ये बीमारी है, मुझे इससे छूटना है, अपने आप मार्ग खुलते जाएंगे, दिखते जाएंगे। और मेडिटेशन एक ऐसा मार्ग है, इसलिए बाबा ने कहा कोई 0.5% योग करते हैं केवल, और योग करना, बाप को याद करना, ये सबसे बड़ा टॉपिक है मासी का घर नहीं, बोला है ना आज। तो प्लानिंग योग की करनी है तो ये विकार अपने आप छूटेंगे, आज 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 मौन की साधना, आज तप की आराधना, आज वरदानों की बारिश। इस भट्टी से जाने से पहले वहां जाके क्या करना है उसकी प्लानिंग बना कर जाना है। इस भट्टी में जब तक रह रहे हैं तब तक, अब तक जीवन में पिछले 6 मास में, 1 साल में क्या हुआ उसके विषय में सोचना है, चिंतन करना है, मैं कहाँ खड़ा हूं, साधना तो कर रहा हूं पर कौन कर रहा है, उस दिशा सूचक यंत्र में देखो कहाँ जाना है, से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कौन जा रहा है, कौन से हमारे लूप होल से, वीक पॉइंट्स है, कौन सी परिस्थितियां आते ही, कौन से विचार आते ही पुराने भोग के संस्कार या भय के संस्कार एक्टिवेट हो जाते, और फिर डर लगता है, भयभीत रहती है चेतना, भय, बड़े गहरे होते हैं भय। हमारे ओपीडी में एक माता आती है, वो पहले कश्मीर में थे, अभी यहाँ शिफ्ट हो गए अपने बेटे के साथ, सीआरपीएफ का केंद्र है माउंट, उसके पति को उसके सामने मार दिया था, उसको कितने साल हो गए, पर वो घटना उस माता के इतनी गहरी है कि हर रात दिखता है, वो धड़कन बढ़ती है, दुखी रहती है। वो आई थी, उसको दवाइयाँ चालू किया, काउंसलिंग सेशंस हुए, अभी काफ़ी ठीक है, उस ट्रॉमा से बाहर है, शॉक है, वो तैयार नहीं थी उसके लिए। तो ऐसे हर्ट, ऐसे ट्रॉमा, ऐसा दर्द हमारे भीतर है, और ऊपर से ज्ञान योग, बाप आए हैं तुम्हें घर ले जाने, ये यहाँ पहुँचता ही नहीं, वो अपने वहीं है नीचे अंडरग्राउंड, वही भय, वही विकार, हम काम कर रहे हैं ऊपर ऊपर कॉन्शियस माइंड में, ये तो अचेतन में है, ये तो इतना गहरा है वो भय, वो डर, वो चिंता, ये कार्य यहाँ चालू है। इसलिए कहा 2-3 दिनों के लिए आवाजों से परे, ताकि हम अपने आप को जान सके, स्वयं स्वयं से मुलाकात करनी है, ये सबसे बड़ा योग है, हम स्वयं से ही दूर है। देखो अपनी दिनचर्या को, खुद के लिए कितना टाइम है, सुबह से उठ के भाग रहे हैं केवल, तो सबसे पहला सूत्र है न्यूनेस, सबसे पहला सूत्र है न्यू इंस्पिरेशन, सबसे पहला सूत्र है कि भगवान ये खुशखबरी लेकर आया है कि अब करो तुम, अब समय है, अब नहीं किया तो कभी नहीं कर पाओगे। अपने अंदर एक स्पिरिचुअल इमरजेंसी क्रिएट करनी है, एक स्पिरिचुअल अर्जेंसी। जब घर को आग लग जाती है तो हम किसी से पूछते हैं कब निकलूं, अभी निकलूं क्या बाहर, पूछते हैं किसी से कल से निकलता हूं, कल निकलता हूं, तब क्या करते हैं तुरंत। किससे पूछते हैं, हाँ तुरंत बाहर। वो हमारे अंदर रिफ्लेक्स है एक। और इसके लिए साधना करनी पड़ेगी, केवल बाबा 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 कहने से नहीं होगा, जप करने से नहीं होगा। नॉट एवरी वन हु कमेथ एंड सेथ लॉर्ड लॉर्ड बट ही दैट डूएथ द विल ऑफ माई फादर शैल एंटर द किंगडम ऑफ हेवन। बाइबल में लिखा है केवल वो लोग केवल हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु कहने वाले, उससे कुछ नहीं होगा। बाबा बाबा कहते हो रोते भी रहते, बाबा 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 रोते भी रहते, घुटना ठीक कर दो, कमर ठीक कर दो, बेटी को ज्ञान मिलाओ, पति को ज्ञान मिलाओ, फरियादे ही फरियादे चलती रहती। अपने ही दुख से बाहर नहीं निकले हैं तो संसार का कल्याण कैसे करेंगे। अभी अभी मुरली में था, दलदल में खुद फंसे हैं, दूसरों को कैसे निकालेंगे। तुम वनवाह में हो, ये पहनूं वो खाऊं, ये लालच। तो मुरली पढ़ते समय सोचो कि ये न्यूज़पेपर है, इसमें सबसे अच्छी वाली खबर कौन सी है, द बेस्ट न्यूज, उसको निकालो वहां से, एक्सट्रैक्ट द पॉइंट, कीप इट ऑन द हैंड, अपने हाथ पर रखो, एकांत में जाओ, प्रकृति के सानिध्य में बैठो और चिंतन करो, ओहो ये तुमने क्या कह दिया, ये तो एकदम नई बात है, ये तो हमने सुनी ही नहीं। दृष्टिकोण बदलना है और जो होगा वो तपस्या से होगा। जैसे फोर्ड की कार थी, सुना होगा हेनरी फोर्ड, इस दुनिया में सबसे पहली कार जो आई हेनरी फोर्ड ने निकाली, सबसे बड़ी कार की कंपनी। एक व्यक्ति उनके ऑफिस में गया, उनके दुकान में शोरूम में कार खरीदने, मालिक ने कहा, थोड़ा नौकर को कहा इनको कार में घुमा के लेके आओ। वो कार में बैठता है और घुमाने ले जाता है, एक दो मील पे ही कार रुक जाती है। वो खरीदने वाला व्यक्ति कहता है ये कैसी कार है तुम्हारी, ये तो ट्रायल में ही खत्म हो गई, ये तो एक दो किलोमीटर में ही रुक गई। मालिक पूछता है वो नौकर से, क्या तुमने इसमें पेट्रोल वेट्रोल भरा था कि नहीं। वो तो पेट्रोल कहाँ से भरी थी, नई कार थी तो पेट्रोल था ही नहीं। वो खरीदने वाला पूछता है फिर यहां तक कैसे चली। कोई तीसरा व्यक्ति कहता है फोर्ड के नाम से ही चलती है कारें, तो इतना प्रसिद्ध है वो, ये वहां हो सकता है, चेतना के जगत में नहीं होगा, वैसे नहीं चलेगा, यहां कुछ करना होगा। ये सारे चक्र जो है सूक्ष्म है बहुत, इतनी जंक उसके ऊपर है, इतने विकारों से इतने वो घने हो गए हैं। साधना करते करते पाएंगे कि काम पहले सत्ता का जो आकर्षण है वो चला गया, धीरे धीरे काम विसर्जित हो गया। किसी को भी देखो स्त्री पुरुष ये भेद दिखाई नहीं देता, चेतनाएं हैं। जो लो लेवल पे हम ऑपरेट कर रहे थे, ये अच्छा ये अच्छी, ये काला ये गोरा, इससे दोस्ती करूँ इसमें गुण ज़्यादा है, इससे फ्रेंडशिप करूँ इससे बात करूँ, चैट्स, आई मिस यू, ओम शांति, कहाँ हो, तुम्हारे लिए जगह रखी है, दोनों मिलके योग करेंगे, पवित्र प्रेम, बाबा आए हैं जल्दी आओ डायमंड हॉल में, साथ साथ चलेंगे और साथ साथ गड्ढे में गिरेंगे। ये मार्ग अकेले का है, नितांत अकेले का, साथ ही बाधा है। नेक्स्ट ये अर्थात एवरीथिंग। सभी अपनी डायरी निकालेंगे और एक प्रश्न हम आपको दे रहे हैं, बाबा हमारा क्या क्या है? वो जो मुख्य सात संबंध है उसको छोड़कर, बाप, टीचर, सद्गुरु, बेटा, साजन, पति, वो छोड़कर, पिता, माता, 1 मिनट के अंदर कितना लिख सकते हैं? लिखो अभी अभी, स्टार्ट। बाबा इज माय एवरीथिंग, वो मेरा सब कुछ है। यहां नहीं देखना है, लिखना है। अच्छा, कोई कोई होगा जिसको लिखना ही नहीं आता। इस हाथ ने बड़े पाप किए हैं, जब लिखेंगे तो पाप कम होंगे। इसलिए क्लास में जब भी बैठो, डायरी पेन के साथ में बैठना है। बिना डायरी पेन के बैठना अर्थात भक्ति मार्ग, ये स्टूडेंट लाइफ है, ये यूनिवर्सिटी है। कनरस नहीं, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा नहीं, पॉइंट्स नोट करने हैं। और हो सकता है कोई नया पॉइंट टच हो जाए जो वक्ता ने कहा ही नहीं। और फिर यहाँ से जब जाएंगे और कहीं 6 मास और 1 साल के बाद इसी डायरी को खोलेंगे, अचानक इस भट्टी की याद आएगी, ये कहाँ लिखा गया था। और यदि उस समय दुखी हो तो अपने आप स्थिति ऊपर उठ जाएगी कि हम वहाँ गए थे और उस समय ये लिखा, ये उस समय इस वायुमंडल में, इस उस अक्षरों में वो ऊर्जा होगी, वो दिव्य, वो पवित्र ऊर्जा होगी। इसलिए लिखना अत्यंत आवश्यक है, चाहे मुरली क्लास में बैठते हो या भट्टी क्लास में या किसी भी क्लास में। इसलिए नहीं कि सुनाने वाला अत्यंत बुद्धिमान है, वो जो सुनाया ही नहीं रहा है, परंतु वो सुनकर हमारे ही मन में कोई ऐसा पॉइंट टच हो जाए जो हमारे 10 साल की उलझन से हमें मुक्त कर दे। और वो उस समय टच हुआ तो तुरंत यदि हमने लिख दिया तो याद रहेगा, नहीं तो भूल जाएगा। टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप। क्या क्या लिखा बताओ? वो कौन है हमारा? एक नया संबंध, एक ही पुराने संबंध नहीं, नए नए संबंध लिखने हैं, बताते जाओ। वो कौन है? वो सब नहीं बताने हैं। कौन है? रूहानी सर्जन है, वो हमारा डॉक्टर है। अगला क्या है? एक शब्द, इस संसार के जितने प्रोफेशंस हैं वो सब वो है। अब बताओ, प्रोफेसर है, धोबी है, खिवैया है, और कौन है? भाई है। भाई किस किस ने बनाया है? भाई भाई, सच में बताना। एक माता थी, उसका पति उसे बहुत तंग करता था, पवित्रता पर झगड़े होते थे, और उसने अनुभव लिखा था कि जब भी ऐसा होता था, उस रात मैं बाबा को याद करती थी, भैया मेरे, राखी के बंधन को निभाना, और हर बार उसने रक्षा की। भाई है, सजनी भी है, वो साजन ही नहीं, सजनी भी है। बंगाल में एक संप्रदाय है, सखी संप्रदाय, जिसमें व्यक्ति अपने आप को पुरुष और भगवान को स्त्री समझता है, वो साजन भी, सजनी भी है। और क्या है? वो ओबीडियंट सर्वेंट भी है। और क्या है? हाँ, सोनार है, लोहार है, जादूगर, रत्नाकर, सौदागर। हम लोगों ने एक लिस्ट बनाई थी एक बार, 108 संबंध बाबा के साथ। इसलिए नए नए संबंध, वो हमारा बिजनेस पार्टनर है, जो भाई लोग है, ऐसा सोचो। वो बिजनेस पार्ट है, मेरा ड्राइवर है, मेरा पायलट है, मेरा सारथी है, वो चला रहा है, वो सब कुछ। वो स्पिरिचुअल काउंसलर है, वो नर्स है, कंफर्ट, कवर ऑफ हार्ट, दिलाराम है, दिलरुबा है, कितने नए नए संबंध है। तो यही सबसे बड़ी न्यूज़ है, सबसे बड़ी खुशखबरी है कि भगवान मेरा सर्वस्व है, भगवान मेरा सब कुछ है। जहां कोई नहीं आएगा वहां वो मदद करता है। एक भाई था यहाँ शांतिवन से सेवा में आया था, उसको कुछ बीमारियां हो गई। वो हॉस्पिटल पहुंचा पर संडे था, बंद था। उसे वो कोई दूसरा चलते फिरते एक डॉक्टर मिल गया होम्योपैथी, पर इतनी भावना से आया था कि मैं आऊंगा और मुझे ठीक हो जाएगा। तो उसको बीच में ही कोई मिल गया और उसने कुछ तो उसको दे दिया और वो ठीक भी हो गया। भावना भावना, केवल डेड रिलेशन नहीं। सुबह उठ के बाप तो बाप भी हो, टीचर भी हो, सब तुम्हें भी हो। फील रिलेशंस, रिलेशंस होते तो क्या करते, मैसेज करते, चैट करते, उसको बार बार बताते हैं। एक भाई ने एक व्हाट्सएप अपना ग्रुप बना के रखा है, व्हाट्सएप चैट विद बाबा, अकेले का ग्रुप है। दिन भर बाबा से बात करते रहे, बाबा अभी मैं यहाँ हूँ, अभी मैं यहाँ हूँ, थैंक यू, अभी मैं ट्रैफिक में अभी जा रहा हूँ अपनी ड्यूटी पर, देखते बाद में भी लूँगा, दोपहर में, ओके नाउ गोइंग फॉर लंच। पूरा दिन भर का चैटिंग चैटिंग चैटिंग, आई मिस यू, आई लव यू, ये जो संसार वाले प्रेमी प्रेमी करते रहते हैं ना, उससे तो ये कितना अच्छा है। वो सारा प्रेम झूठ है जो संसार में होता है, वो प्रेम होता ही नहीं है, वो तो भय होता है अकेलेपन का, वो पजेसिवनेस होता है, वो वासना होती है, कुछ और ही होता है। तो दूसरा ई अर्थात एवरीथिंग। कल अमृत वेला कोई नया संबंध ले लो और उसका अनुभव करो, वो मेरा बेटा है। किसी संत ने लिखा मेरा चाचा मामा काका सब, मैं किधर जाऊं, तुम ही सब कुछ हो, सारे रिश्तेदार तुम ही हो, वो सबसे बड़ा रिश्तेदार है, बाकी सारे रिश्ते तो व्यापार है। विद इट्स अटर सैंक्टिटी ऑन द सर्फस एंड अटर हॉलोनेस विद इन, विद इट्स सैंक्टिफाइड शॉपकीपिंग, बाजार है केवल एक। वो कैसे मेरा है इसका अनुभव करना, ये सबसे बड़ी खुशखबरी है। तीसरा डब्लू वॉक। उसने कहा है तुम एक कदम चलो तो मैं 1000 कदम तुम्हारी ओर चलूंगा, तुम गिर गए हो, केवल एक कदम चलो मैं आऊंगा, एक तुम्हारा 1000 मेरे, ये उसका वायदा है। किधर भी हो, कैसे भी हो, वो देगा। बाइबल में स्टोरी है दो बेटों की, पिता है, दो बेटे हैं। पहला बेटा कहता है मुझे मेरा हिस्सा चाहिए, अपना हिस्सा ले लेता है, जाता है उड़ा देता है पैसा पूरा। और दूसरा जो बड़ा बेटा है वो मेहनत करता है, खेतों में रहता है, बहुत ये करता है। और दूसरा बेटा सब पैसे दारू और सब में बर्बाद कर देता है, भिखारी बन जाता है। लोग वो सोचता है अब मैं क्या करूं, भीख ही मांगूंगा, नौकरी करूंगा। लोग समझाते तेरा पिता कितना बड़ा है, वो कहता है ठीक है मैं उसके घर पे पिताजी के घर में जाके नौकरी करूंगा, नौकर बन के रहूंगा। और वो जैसे ही पिता को खबर मिलती है कि मेरा बेटा आ रहा है, स्वागत की तैयारी होने लगती है, फूल माला है, सब कुछ होने लगता है। पर जो बड़ा बेटा है उसको बड़ा दुख होता है, मैं यहां हूं, मेरे लिए आज तक तुमने ये कुछ नहीं किया, और ये जो छोड़ के गया सब कुछ इसने लुटा दिया, अब वो आ रहा है तो उसके लिए ये सब किया जा रहा है, व्हाट इज दिस। फिर भी वो छोटा बेटा आता है, पिताजी उसको गले लगाते हैं, बहुत उसका स्वागत करते, वो रोता है। पिता अपने बड़े बेटे से कहता है तुम तो कहीं गए ही नहीं थे ना, ये खो गया था। और बाइबल में एक शब्द आया है जो रोज की मुरली में आता है, ही इज माई लॉन्ग लॉस्ट एंड नाउ फाउंड चिल्ड्रेन चाइल्ड, जो खो गया था जो फिर से मिल गया। मुरली में शब्द आता है सिकिलधा, ये वहीं से लिया हुआ शब्द है इसी स्टोरी से। तो हम वो लौट कर आएंगे तो वो फिर से गले लगे ना, माल कितने भी बड़े पाप हो, कुछ भी हो। गीता में भी लिखा है मेरा भक्त है उसका विनाश नहीं होगा, नमे भक्त्या प्रयश्चन्ति। यदि अनन्य भाव से मैं वो मेरे पास आ जाए तो मैं उसे स्वीकार करूंगा, चाहे हम कितना भी भटक गए, एक कदम उठाओ तो वो 100 हजार कदम उठा के आएगा अपनी हमारी तरफ। इसलिए ये सबसे बड़ी खबर है और लास्ट है ऐस सच्चाई। मुरलियों में आ गया अगर तुम बाबा से सच्चाई से रहो, उसको जो जो पाप किए वो सुना दो तो तुम्हारा आधा माफ हो जाएगा। तो इस ब्राह्मण जीवन में यदि हमसे बहुत विकर्म हुए हैं, पाप हुए हैं, जब से ब्राह्मण बने जब तब से अब तक जो कुछ भी हुआ है, जो श्रीमत के विरुद्ध था, जो श्रीमत का उल्लंघन था, जो पाप था, जो विकर्म, जब माया ने चमाट मारी थी, मुंह फेर दिया था, कल की साकार मुरली उसको सुनाओ, सर्जन को सुनाओ कि ये हुआ, अब तुम बताओ क्या करना है। किसी सूफी संत ने लिखा है, हे प्रभु हे खुदा, मेरे जैसा पापी इस संसार में नहीं है, ऐसा कोई पाप नहीं है जो मैंने नहीं किया, पर अब कसौटी ये मेरी नहीं तेरी है, क्योंकि मेरे पापों का कोई अंत नहीं तो तेरे रहम का भी कोई अंत नहीं है। अब ये मेरी परीक्षा नहीं, अब ये तेरी परीक्षा है। यहां अधिकार भी है और प्रेम भी है और समर्पण भी है। स्वीकार करना ये हुआ है, तब ऐसे सच्चे दिल को भगवान को बहुत प्रिय है। और जो छल कपट छल कपट छल कपट करते हैं, ऐसे लोग उसे बिल्कुल प्रिय नहीं है। जिनका हृदय बहुत स्वच्छ है, बहुत शुद्ध है, किसी के लिए घृणा नहीं अंदर, पाप हुआ है स्वीकार करते हैं, गलती हुई है स्वीकार करते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। विभीषण आता है श्री राम के चरण में, सब लोग कहते हैं ये षड्यंत्र है रावण का, इसको लेना ही नहीं है, तो खून उधर का ही। राम कहते ये मेरी शरण में आया है और निर्मल हृदय से आया है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मुझे जो छल करता है वो पसंद नहीं है, जो दूसरों के दोष देखता है, छिद्रान्वेषण करता है, नुक्ताचीनी करने वाले, फॉल्ट फाइंडर्स आई डोंट लाइक। दोज हु आर प्योर इन हार्ट, प्योर इन कॉन्शियंस, आई लव देम, आई एक्सेप्ट देम। अब वो मेरी शरण में, मन मना भव मध्याजी भक्ता माम नमस्कुरु, मामे वैश्यसी सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसी में, वो मुझे प्रिय है ये मेरा वादा है। इसलिए स्वीकार कर लेना, एक्सेप्ट कर लेना, उसकी शरण में चले जाना। और कभी कभी अकेले में, अकेले में बाबा के कमरे में मत करना, पूरा दंडवत बाबा के सामने। भक्ति मार्ग में करते हैं ना, पूरा लेट जाते हैं, हे प्रभु भक्त बनना है, परंतु कैसा भक्त, वैसा नहीं, मांगने वाला नहीं, इसका हृदय भक्ति अर्थात राजयोग का एक नाम भक्ति योग भी है, प्रेम योग भी है, संपूर्ण योग भी है, संन्यास योग भी है, समर्पण योग भी है। वो जो संसार में योग करते हैं और ये जो राजयोग है, इसमें अंतर है, उसमें पैरों को क्रॉस करते हैं, इसमें विकारों को क्रॉस करते हैं। अभी आ रहा है ना 21 जून, वहां शरीर को दिशा दी जाती है, यहां चेतना को दिशा दी जाती है। तो ये ऐसी चार बातें हैं, सबसे पहली बताई एन न्यू इंस्पिरेशन, मुरली में ढूंढना है कौन सी नई बात है, नवीनता लानी है जीवन में, वो चीज जो हमने अब तक की नहीं है, करो, मुरली में आया है दान करो, करके देखो, जाओ किसी अनाथ आश्रम में, किसी वृद्धाश्रम में, मदद करो वहां के लोगों की। हम देखते हैं हॉस्पिटल में कुछ लोग आते हैं, रात को आते हैं 10 बजे, फल देके सबको चले जाते हैं चुपचाप, कौन है क्या है कहीं कोई नाम नहीं, कोई आएगा चुपचाप, किसी को कोई गिफ्ट देके चुपचाप निकल जाएंगे, पेशेंट को हम पूछते हैं किसने दिया, वो कहते हैं वो कोई तो आया था उसने दिया। कौन आया था? सिस्टर को भी नहीं पता कौन आया था। गुप्त था, अनाथ आश्रम, वृद्धाश्रम, ये जो स्थूल दान भी है इससे दान की वृत्ति पुष्ट होगी। इतनी सारी चप्पलें जमा करके रखी है, दे दो। हमारे पेशेंट हॉस्पिटल में, एक पेशेंट आता था, उसके 7-8 मोबाइल रहते थे, एक एक इधर, एक इधर, एक पीछे के जेब में, एक इधर की जेब में, एक हाथ में, एक दूसरे हाथ में, 7 से 8 मोबाइल रहते थे उसके हमेशा। जब देखो कभी इसमें कॉल, उसका कॉल आता तो हर बार नया नंबर होता था। फिर कहते मैं बोल रहा हूँ। एक दिन हॉस्पिटल के कैजुअलिटी में हम जा रहे थे, कोई पेशेंट आ गया, डेड बॉडी, डेथ घर पे ही हो गई थी, वही था, हार्ट अटैक आ गया बड़ा। हॉस्पिटल आते आते खलास, हम देख रहे थे उसको, डेड बॉडी पड़ी थी, हम सोच रहे थे इसके मोबाइल। जीवन कितना अनित्य है कि जो करना है आज 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 ही निर्विकारी बनना है, आज ही नष्टो मोहा बनना है, आज ही सभी विकारों से पार निकल जाना है। ये सारे एडिक्शन, डिजिटल एडिक्शंस, यूट्यूब एडिक्शंस, इसके एडिक्शन, रैंडम ब्राउजिंग के एडिक्शंस, ऐप्स के एडिक्शंस, चैटिंग के एडिक्शन, सर्फिंग के एडिक्शन, इंटरनेट एडिक्शन, न्यूज़ एडिक्शन, गेम एडिक्शन, शॉपिंग एडिक्शन, आज पहला ई, दूसरा पहला एन, दूसरा ई, एवरीथिंग। लिखो क्या क्या संबंध उसके हो साथ हो सकते और अनुभव करो उस संबंध का कि मेरा वो है, वो सिखाएगा मुझे, वो ट्यूटर है, वो एजुकेटर है, वो मेरा कोच है, वो मेरा गाइड है। ये कितना अच्छा संबंध है, बाबा मुझे बताओ इस परिस्थिति में मैं क्या करूं, क्या किया जा सकता, तुम बताओ। और जब तक बताओगे नहीं मैं जाऊंगा नहीं, जिद है मेरी, तुमको देना ही पड़ेगा उत्तर। W अर्थात वॉक, हिम्मतहीन हो गए, गिर गए, फिर भी एक कदम बढ़ाओ तो आएगा। एक्सरसाइज करते हैं तो पहले दिन कितना दर्द होता है और कई लोग छोड़ देते हैं, परंतु दर्द की तो दवा ही दर्द है, कंटिन्यू एक्सरसाइज, दूसरे दिन कम हो जाएगा, तीसरे दिन कम हो जाएगा, चौथे दिन और कम हो जाएगा, फिर प्रैक्टिस हो जाएगी। और ऐसे ही बड़े बड़े एथलीट्स बनते हैं, पूरे शरीर में उनके दर्द ही रहता है हमेशा, उसकी आदत पड़ जाती है उनको, उनको उन्हें सुविधा पसंद ही नहीं, उन्हें खतरे चाहिए, खतरे, डिस्कम्फर्ट उन्हें प्रिय होता है। और तपस्वी के लिए भी ऐसा ही है, जो सुख सुविधाओं से अटैच्ड है और एडिक्ट हो गया है वो कैसे आगे बढ़ेगा। सब मेरे अनुसार हो, सब मेरे अनुसार चले, ये अच्छा मिले, वो अच्छा मिले, क्या है? ऐसे तपस्या होती है। तपस्या अर्थात असुविधाओं में छलांग, जंप इनटू द अननोन, पता ही नहीं क्या होने वाला है, बस कूद जाओ, बस एक सहारा है वो, और कोई नहीं। लास्ट सच्चाई, ऑनेस्टी, ट्रूथफुलनेस, बाबा को बताओ ये हुआ है, ऐसा ऐसा हुआ है, बता दोगे तो आधा माफ होगा, अगर नहीं बताओगे और छुपाओगे तो बीमारी नासूर होगी, छुपा के रखोगे। कई पेशेंट्स आते छिपा के रखते हैं, पता ही नहीं चलता है क्यों ऐसा हुआ, हम कुछ और ही इलाज करते बैठते हैं, बाद में पता चलता है अरे इसने तो वो पॉइजन खा के आया था, पुलिस केस होगी, ये होगी, छिपा के रखते हैं, छिपा के रखते इन्फेक्शन हो रहा है, हम ये ट्रीट करे जा रहे, बाद में पता चलते बाहर से कहीं से एबॉर्शन करा के आए हैं। तो डॉक्टर को अगर छिपाएंगे तो इलाज गलत होगा, दवाइयाँ चालू है इधर उधर, बीड़ी गुटखा तंबाकू, वो कहते डॉक्टर के सामने हमने कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, हम तो कुछ नहीं, और फिर बाद में पता चलता है। यहाँ पर भी ऐसा है, भव भय वैद्यम, वैद्यनाथ आया है सामने, उसको सब सुनाओ तो सही इलाज होगा, समय पर इलाज होगा और हम जल्दी ठीक होंगे। सभी पेन पेंसिल नीचे रख देंगे और अगले कुछ समय तक उस प्राणनाथ, प्राण सखा, प्राणेश्वर, परम प्रिय परमात्मा की याद में खो जाएंगे। सभी स्थिर, रेड लाइट, मन शांत। संपूर्ण समर्पण। सूक्ष्म वतन ने बाबा के सम्मुख कुछ समय के लिए आंखें बंद और विजुलाइजेशन को एक्टिवेट करेंगे, स्पष्ट देखेंगे। बाबा मेरे सामने है और सच्चाई से बाबा को वो बात आज सुनाएंगे जो आज तक किसी को नहीं सुनाई। वो हो सकती है बहुत पुरानी बचपन की कोई बात, वो कोई भय, कोई चिंता, कोई दर्द, कोई पीड़ा, कोई पाप, कोई विकर्म, कोई दोष, कोई संस्कार हो, और पूछो उससे, हे वैद्यनाथ, हे भव वैद्य, अब तुम बताओ क्या किया जाए। ये है बीमारी, इलाज तुम बताओ। भटक भटक के अंततो गत्वा मैं आत्मा तुम्हारे पास आई हूं। तुम रोज सामने हो फिर भी क्यों दूर हो पता नहीं। बाबा सच्चाई से, सफाई से, बिना छिपाए इस ब्राह्मण जीवन में हुए हुए पाप, विकर्म, गलतियां, गफलत, अपराध, सब कुछ सुना दो। अनुभव करेंगे, बाबा ने अपना वरदानी हस्त मेरे सिर पर रख दिया है अपना ही हाथ अपने ही सिर पर रखेंगे एक हाथ, और अनुभव करेंगे ये परमात्मा हाथ है। हिम्मत का अनुभव, शक्ति का अनुभव, ऊर्जा का अनुभव। मेरे मन में जो भारीपन है, जो बोझ है, वो उतर गया है। हाथ नीचे कर देंगे, यहाँ बैठे बैठे जहाँ आप रहते हैं उस घर को या सेंटर को अपनी आंखों के सामने लाएंगे, और सुबह से लेकर रात तक की जो दिनचर्या है तटस्थ और साक्षी होकर देखेंगे क्या हम करते हैं। जीवन में कितनी उत्सुकता है, उमंग है, उत्साह है, क्या ये जीवन उत्सव है या कोई बोझ और जिसे हम घसीट रहे हैं। देखेंगे पूरा दिन बाबा को किस किस संबंध से याद करते हैं। देखेंगे कितना कदम उसकी ओर चलते हैं, या मेरे कदम कहीं दूर जा रहे हैं। देखेंगे एक दिन की दिनचर्या में कितनी बार झूठ का सहारा लेते। यदि भगवान लिस्ट निकाले सच्चे बच्चों की, हमारा नंबर कहाँ होगा? 100 के अंदर या 500 के बाहर कहाँ, या लाखों में कहीं? अब मन से यात्रा करेंगे ऊपर पांडव भवन की, शांति स्तंभ, शक्ति का अनुभव। हिस्ट्री हॉल व्यर्थ से मुक्त, बाबा का कमरा बाप समान, कुटिया। अनुभव करो कि बाबा की गोद में मैं सो रहा हूं, रिलैक्स। अब देखेंगे एक पहाड़ी को जिसकी चट्टान पर स्वयं भगवान खड़ा है और खुशखबरी सुना रहा है। जो थके हुए हैं वो आ जाओ और मुझ में आराम करो, जो दुखी है वो आ जाओ और अपने दुखों को मिटाओ। हे देव कुल की आत्माएं, आ जाओ, मैं खुशखबरी लाया हूं नवयुग की, नवजीवन की, खुशियों की। अब देखो हम स्वयं चढ़ रहे उस पहाड़ पर और बाबा के साथ साथ कार्य कर रहे हैं। जो कार्य उसका वो मेरा, मेरे जीवन के सारे दुख समाप्त हो चुके, मेरे जीवन के सारे विघ्न नष्ट हो चुके। मैं निर्विघ्न हूं, निर्विकार हूं। अनुभव। आंखें खोलेंगे और अपनी ही जगह पर बिना आवाज किए संपूर्ण मौन और अव्यक्त स्थिति में सभी खड़े हो जाएंगे। कोई भी आवाज नहीं, अव्यक्त स्थिति, अशरीरी अवस्था, और एक दूसरे का हाथ पकड़ लेंगे जो बाजू में है, हमारी तरफ देखते हुए, आंखें बंद। अनुभव करो इन दो आत्माओं से पवित्रता की किरणें, शक्तियां, करंट मेरे हाथों में आ रही है। पूरे हॉल में पवित्रता की ऊर्जा एक सागर लहरा रहा है। पूरे हॉल की संगठित ऊर्जा मुझ में प्रवेश कर रही है। मैं परम पवित्र आत्मा हूं। मेरे अंग अंग में पवित्रता है, मेरे रोम रोम में पवित्रता है। पवित्रता का एक करंट, पवित्रता का एक सर्किट। दोनों आत्माओं की पवित्रता मेरे हाथ में आ रही है। सारे हॉल में जो पवित्रता है वो मुझ में समा रही है और मेरे अंग अंग से पवित्रता पूरे हॉल में फैल रही है। एक दिव्य ऊर्जा, एक शक्ति, परम धाम से शिव बाबा की पवित्र किरणें मेरे सिर पर हैं। मैं अखंड ब्रह्मचारी हूं, अखंड ब्रह्मचारिणी हूं, निर्विघ्न हूं। पूरे शरीर में प्रकंपन ऊर्जा, पूरे शरीर में वाइब्रेशंस, मैं प्राण स्वरूप चेतना हूं, मैं अशरीरी आत्मा हूं। देह भान, देह अभिमान, देह अहंकार, देह का घमंड सबसे परे, इस देह में होते हुए भी उपराम, अनअटैच्ड, मैंने आत्मा का सुख चखा है, अतींद्रिय सुख। संसार के सारे सुख मेरे लिए फीके हैं, देह के भोग विलास मूर्खता है, व्यर्थ है। मैं दिव्य ऊर्जा, मैं शिव की शक्ति हूं, शिव की जो शक्ति है वो मैं हूं। पहाड़ों पर देवी का एक मंदिर, भक्त सामने खड़े हैं, सिंह वाहिनी अष्टभुजाधारी दुर्गा मैं हूं। अपने स्वरूप को देखेंगे, महिषासुर मर्दिनी मैं हूं। भक्त गा रहे हैं, आरती कर रहे हैं, मैं अपने दिव्य स्वरूप में हूं। हाथ छोड़ देंगे और धीरे धीरे बैठ जाएंगे। आवाज नहीं, मौन। There.